मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 26 मार्च 2018 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में आप सभी का मैं हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और हार्दिक रूप से अभिनंदन भी करता हूं। फ्रेंड्स, आज के लाइफ मैनेजमेंट की शुरुआत मैं एक शेर से कर रहा हूं। उर्दू का शेर है, मुझे नहीं मालूम कि ये लिखा किसने है, शेर कह लीजिए, गजल कह लीजिए आप, लेकिन है बड़ी प्यारी सी और मुझे लगता है कि आपको पसंद भी आएगी, क्योंकि मैंने देखा है कि गीत की तुलना में शेर और शायरी में आप सबको ज्यादा आनंद आता है और नो डाउट कि उसमें सघनता भी ज्यादा होती है, वो आम लोगों को ज्यादा अपील भी करती है। और चूंकि उसके विषय ऐसे होते हैं जो हम सबसे जुड़े हुए होते हैं और हम सबके बड़े भावनात्मक पक्ष से जुड़े होते हैं, इसलिए भी मुझे लगता है कि शायद वो हम सबको कुछ ज्यादा ही पसंद आती है। तो आइए मैं आपको इस तरह की चार पंक्तियां सुनाता हूं पहले, और फिर हम लोग इस पर कुछ मैं आपसे बातें करूंगा। मित्रों, देखिए कि क्या चाह रहा है एक प्रेमी, क्या चाह रहा है, राइट? प्रेमी जैसे ही मैंने कहा है तो आप थोड़े से सतर्क हो गए होंगे, मैं जान रहा हूं, आपके कान थोड़े से ज्यादा अलर्ट हो गए होंगे यार कि ध्यान से सुनो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई चूक हो जाए, है ना, ये होता है। और आप देखिए कि ये लाइफ मैनेजमेंट का कितनी मजेदार चीज है, लाइफ मैनेजमेंट इस रूप में मजेदार चीज है कि जिन चीजों को हम पसंद करते हैं उन चीजों के साथ हमारे संबंध एकदम बदल जाते हैं, हम एकदम अलर्ट हो जाते हैं, हम पूरी तरह से अपने को उसके पात्र, उसके लायक बना लेते हैं, उसका पात्र घोषित कर देते हैं। और जब आप किसी भी चीज के लिए खुद को उसके योग्य बना लें तो वो चीज आपकी हो जाती है पूरी, मतलब यू कह लीजिए कि जिंदगी में जो हम पाना चाहते हैं और जो बनना चाहते हैं उसकी फिलॉसफी ही यही है, उसका फार्मूला ही यही है। खैर, मुझे लग रहा है कि जरूर आप लोगों ने अपने आप को इन चार पंक्तियों का पात्र बना लिया है, आप सबके कान खड़े हो गए होंगे, अलर्ट हो गए होंगे। आइए अब उनमें कुछ डालते हैं, उन कानों में, कानों तक ध्वनियां पहुंचाते हैं। मित्रों, पहली लाइन है, एक मुस्कान तू मुझे एक बार दे दे, एक मुस्कान तू मुझे एक बार दे दे, ख्वाब में ही सही एक दीदार दे दे, ख्वाब में ही सही एक दीदार दे दे। दीदार का मतलब है दर्शन, झलक दिखा दे, ख्वाब का मतलब है स्वप्न। बस एक बार कर ले तू आने का वायदा, बस एक बार कर ले तू आने का वायदा, फिर उम्र भर का चाहे इंतजार दे दे। मुझे मालूम है कि आखिरी लाइन में आपकी वाह वाह निकल गई होगी, आवाज भले ही ना निकली हो लेकिन मन से कुछ न कुछ तो इस तरह का भाव जरूर अभिव्यक्त हुआ होगा। अब देखिए दोस्तों कि इसमें कह क्या रहा है। यह है सच पूछिए तो सच्ची चाहत, सच्ची चाहत जिसे कहते हैं। मित्रों, को पाने की चाहत नहीं होती है, पाने की चाहत नहीं होती है। सच्ची जो चाहत होती है वो केवल इस बात की चाहत होती है कि आपको पता लग जाए कि वह आपको चाह रहा है, बस दैट्स ऑल, इतना ही सफिशिएंट है कि वह आपको चाह रहा है, वह आपको प्यार कर रहा है, वह आपको प्यार कर रही है। और मित्रों, मेरे थोड़े से इस प्यार शब्द को आप थोड़ा सा बढ़ा भी दीजिएगा, इसका दायरा भी बढ़ा दीजिएगा, है ना, ये केवल रोमांटिक प्यार तक सीमित नहीं है, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए तो आपको इसका और ज्यादा आनंद आने लगेगा। लेकिन आप चाहें तो आप इसे यहां तक भी सीमित रख सकते हैं। अब आप देखिए कि वो क्या कह क्या रहा है। वो कह रहा है कि मैं कुछ भी नहीं चाह रहा हूं, बस एक बार तू बस मुस्कुरा दे। आप देख रहे हैं कि मतलब मैं तुम्हारे चेहरे पर एक खुशी देखना चाह रहा हूं। मुस्कुराने का मतलब क्या है कि मैं तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखना चाह रहा हूं, कि तुम खुश हो। मेरे लिए इतना ही जानना पर्याप्त होगा कि तुम खुश हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर वो कह रहे हैं कि ठीक है, तुम मेरे सामने मत आओ, मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम मेरे सामने आओ और मेरे सामने आकर मुस्कुरा दो, क्योंकि मुझे मालूम है कि उसमें बड़े संकट हैं, बड़ी प्रॉब्लम है, वो इतना आसान नहीं है कि तुम मेरे सामने आ जाओ, या हो सकता है कि तुम आना भी ना चाह रही हो, तुम्हारी इच्छा नहीं है कि तुम मेरे सामने आओ, लेकिन कम से कम एक बात तो कर दो, एक काम तो कर दो। और वो काम क्या है, ख्वाब में ही सही। देखिए, ख्वाब में ही सही जब वो कह रहा है तो उसके साथ साथ वो ये भी कह दे रहा है बिना कहे कि कोई बात नहीं, तुम मेरे सामने नहीं आना चाह रही हो तो। अब देखिए कि ये बात कहीं लिखी नहीं गई है, यही तो कविता की खूबसूरती होती है, ये कहीं लिखी नहीं गई है लेकिन अनलिखी भी नहीं रह गई है, ना कही भी नहीं गई है लेकिन कही भी जा रही है कि ख्वाब में ही सही। चलो प्रत्यक्ष रूप से मत आओ, ख्वाब में आ जाओ और फिर क्या है, एक दीदार दे दे, लेकिन तुम्हें मैं देखना चाहता हूं, देखने की तो मेरी ख्वाहिश है, ये इच्छा तो मेरी है, प्रत्यक्ष रूप से न सही तो ख्वाब में ही आ जाओ और वहां अपने दर्शन दे दो। देखिए दीदार शब्द में बहुत बहुत ये प्यारा शब्द है, बड़ा पवित्र शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है ये, दीदार दे दो। आप इसको पूरी तरह से आप कह लीजिए कि आप ईश्वर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि जो जो शायरी है वो केवल प्रेमी और प्रेमिका की ही बात नहीं है, ये बल्कि ईश्वर और आत्मा की भी बात है, आत्मा और परमात्मा की भी बात है, जीव और ईश्वर की भी बात है। और इसी ही हम सूफी दर्शन भी कहते हैं। सूफी जो दर्शन है, जो सूफियाना प्रेम है, वो इसी तरह का प्रेम होता है जो मानव से ऊपर उठ करके अध्यात्म और ईश्वर तक पहुंच जाता है। तो आप इसे उस रूप में भी अप्लाई कर सकते हैं मित्रों। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि आप इसे केवल आप केवल शारीरिक प्रेम या जो भौतिक जगत का प्रेम है उस रूप में ही मत लीजिए, इसे आप कहीं तक भी फैला सकते हैं। तो कह रहा है वो कि एक दीदार दे दे, ख्वाब में ही सही एक दीदार दे दे। तीसरी लाइन वो क्या कह रहा है, और चौथी लाइन में तो बिल्कुल आप यूं समझ लीजिए कि अंदर से झिझोड़ करके रख देती है, चौथी लाइन निचोड़ देती है बिल्कुल दिल और दिमाग को। तीसरी लाइन कह रहे हैं बस 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 एक बार, बार बार नहीं, मैं तुमको बार बार तकलीफ दूंगा ही नहीं, बस एक बार कर ले तू आने का वायदा। तो एक बार आने को कह दे कि तू आएगी या तू आएगा, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या चाहे ख्वाब में ही सही, एक बार बस वायदा भर कर ले, मुझे वायदे की तुम्हारी जरूरत है। लेकिन नीचे की लाइन में वो क्या कह रहा है दोस्तों, नीचे कह रहा है फिर उम्र भर का चाहे इंतजार दे दे, बस वायदा भर कर दे, इसके बाद तुम आना मत आना उसकी मुझे चिंता ही नहीं है, तुम्हारे वायदे से ही मैं समझ लूंगा कि तुम आ गई हो, तुम आ गए हो, मेरे लिए यही सफिशियंट है कि तुमने वायदा कर दिया। तुम्हारे उस वायदे को ही याद कर करके मैं पूरा जीवन गुजार लूंगा और मैं ये समझ लूंगा कि तुम आ चुके हो। अब आप देखिए कि वो कितनी बड़ी बात कह रहा है। इसका मतलब है कि एक बार अगर तुम मेरे इस प्रेम निवेदन को स्वीकार कर लो, बस और कुछ नहीं, तो मेरे लिए यही पर्याप्त है। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम मुझसे आकर मिलो, तुम मेरे साथ रहो ही, बस स्वीकार कर लो। नहीं मिलेंगे कोई बात नहीं, साथ में नहीं रहेंगे तो भी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें देखूंगा नहीं तब भी कोई बात नहीं, जो मैं चाहता हूं वो केवल कि तुम अपनी चाहत मेरे प्रति व्यक्त कर दो, मुझे इस बात का पता लग जाए कि नहीं तुम भी मुझे थोड़ा बहुत चाहती हो, मैं तो तुम्हें चाहता ही हूं। इसका मतलब क्या हुआ मित्रों, अगर आप इसका थोड़ा सा अप्रत्यक्ष अर्थ निकालें या इन चार चंद पंक्तियों से हट करके कुछ और सोचें, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो लिखने वाला है या ये जो प्रेमी है या ये जो प्रेमिका है, ये अपने लिए जीवन भर के दर्द की मांग कर रहा है, दर्द की मांग कर रहा है, सौंदर्य और दर्द। सौंदर्य इस मायने में कोई कह रहा है कि एक बार दीदार दिखा दो, ख्वाब में ही सही, तो वो सौंदर्य की मांग कर रहा है, और इसके बाद फिर जिंदगी भर के दर्द की मांग कर रहा है। आप देखिए, क्योंकि वो ये नहीं कह रहा कि तुम बताओ तो सही कि तुम मुझे चाहती हो या नहीं चाहती हो, तुम मुझे चाहते हो या नहीं चाहते हो, नॉट एट ऑल। वो तो ये कह रहा है कि तुमको आने का वायदा करना है, कि तुम मिलने आना चाह रही हो, दैट्स ऑल, इसके बाद मत आओ, मैं जिंदगी भर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, देख रहे, जिंदगी भर का इंतजार कर लो, जानते हुए भी मैं प्रतीक्षा करूंगा कि तुम नहीं आओगी, लेकिन मैं प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि प्रतीक्षा का अपना एक अद्भुत आनंद है। तुम्हारे आने की सोच सोच कर मेरे मन में जो उत्साह उल्लास पैदा होगा, मेरे जीवन के लिए वही सब कुछ है। और तुम्हारे आने की प्रतीक्षा में अगर मुझे कोई दर्द भी हुआ, कोई तकलीफ भी हुई, तो कोई बात नहीं, मैं अपने उस दिल के दर्द को अपनी दौलत मानूंगा, वो मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत होगी। बस तुम एक बार कह तो दो कि तुम आने वाले हो। दोस्तों सच पूछिए तो जो सच्ची चाहत होती है, चाहे वो भौतिक जगत की चाहत हो चाहे वो आध्यात्मिक जगत की चाहत हो, वो यही होती है। वो इसके लिए इंतजार नहीं करती है, वो यूं कह लीजिए कि इसकी प्रतीक्षा नहीं करती है, इसके लिए अपने आप को गरीब भी नहीं समझती है कि वो मुझे नहीं मिल रहा है। नो नो नो, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। वो जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी सोचता है, वो केवल अपने ही तरफ से सोचता है, अपने ही तई सोचता है, और उसे ही वो श्रेष्ठ बना देता है। यहां आपको जरा भी नकारात्मकता नहीं मिलेगी। ये पूरे की पूरी जो चार पंक्तियां दोस्तों सकारात्मकता से भरी हुई है। सकारात्मकता, अनुनय, विनय, प्रार्थना। आप देखिए कि वो कोशिश कर रहा है कि सामने वाले को कम से कम तकलीफ हो। जबरदस्ती कहीं नहीं है, जोर कहीं नहीं है, केवल अनुनय है, विनय है, और इसके बाद खुद को ठीक करने की प्रक्रिया है। आपको नहीं लगता मित्रों कि यह जिंदगी के सभी क्षेत्रों पर इसे लागू किया जा सकता है? बड़ी खूबसूरती के साथ लागू किया जा सकता है। दोस्तों मुझे इन चार पंक्तियों में सच में बहुत बड़ी फिलॉसफी दिखाई दी, तो मुझे लगा कि मुझे यह आप तक भी पहुंचानी चाहिए। तो मित्रों आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। अब आप सबकी अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।